IVM
भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है।
तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी।
हेलो सौरभ, कैसे हैं आप?
एकदम बढ़िया प्रणय, ख्याति कैसी हो तुम?
बस एकदम ठीक है। 2022 फिनिश होने आया है, कैसा लग रहा है आपको?
हाँ ये बात एकदम ठीक है। मतलब कैसा लग रहा है, हम तो लगे हुए जद्दोजहद में अपने क्वार्टरली नंबर पूरे करने में। यहाँ पर सब लोग छुट्टी मनाने में लगे हुए हैं, हम लोग अपनी क्या कहते हैं सेल्स में लगे।
अच्छा
हाँ वही तो है, वही 2022 खत्म हो रहा है तो मतलब हाँ काम तो चल ही रहा है। एक और नया साल आ जाएगा, बस डेट बदल जाएगी, काम तो चलता ही रहता है। लेकिन हाँ ये ऐसा अच्छा मौका रहता है थोड़ा रुकने का और एक पीछे क्या हुआ पिछले एक साल में उस पर थोड़ा नजरिया सोचते हैं हम लोग और पता करते हैं क्या हुआ। क्योंकि ये साल पुलियाबाजी के लिए थोड़ा अलग था। पिछले सालों में हम लोग हर फोर्टनाइट में एक एपिसोड रिलीज करते थे, मतलब तो हमारे कुछ 26 एपिसोड होते थे हर साल में। लेकिन इस साल हमारे कितने 52 एपिसोड तो हो चुके हैं ऑलरेडी, तो डबल हो चुके हैं। तो हमारे श्रोताओं को बहुत ज्यादा सुनना पड़ा हमको पिछले एक साल में।
तो आई मीन ये लास्ट एपिसोड है साल का, तो इसको थोड़ा डायलॉग भी बना सकते हैं। मतलब हमारे श्रोता भी हमको बताएं कि ये फ्रीक्वेंटली और अभी कभी कभी हम लोग एक छोटा टॉपिक लेते हैं, कभी गेस्ट को बुलाते हैं, इसको थोड़ा मिक्स एंड मैच किया है, थोड़ी वैरायटी बढ़ गई है। तो आपको ये पसंद है नहीं है, इसमें कुछ आप फर्क देखना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? और हमारे पास वैरायटी भी बहुत है टॉपिक्स की, तो किस टाइप के टॉपिक आपको ज्यादा पसंद आए, कुछ कम पसंद आए, आपस में भी पूछेंगे ना। ख्याति तुम्हारे फेवरेट एपिसोड्स कौन से हैं इस साल?
मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है बाय द वे कि बेस्ट ऑफ 2022, और हम कोशिश करेंगे कि हम यूट्यूब पे ये डाल के लोगों के साथ शेयर करें। तो जैसे मैंने रियलाइज किया कि मैंने काफी एपिसोड्स मिस किए थे, तो आई थिंक अगर किसी ने मिस किए तो एटलीस्ट वो बेस्ट ऑफ 22 में जाके एक बार देख सकते हैं। और एक तो सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, फिर भी मुझे पसंद आया COVID-19 वाला एपिसोड जो आपने किया था मिहिर महाजन के साथ, क्योंकि एक तो उस विषय पे बहुत कम लोगों ने बात की है, और तब मैं श्रोता थी तो मैं एक ऑडियंस के एंगल से बता रही हूँ मेरा फीडबैक की, तब मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आप लोगों ने उस पर बात की थी। और मुझे लगता है शायद और बात भी होनी चाहिए उस टॉपिक पे आगे भी। आई थिंक हमारे देश में थोड़ा और लेसन्स लर्न टाइप का कुछ होना चाहिए इस पे, और होपफुली आगे और डेटा आएगा तो हम उस पे और चर्चा कर पाएंगे। लेकिन वो एक मेरे लिए उस रीजन से काफी मुझे अच्छा लगा था वो। आपका कौन सा एपिसोड आपका पसंदीदा था, या जिसमें आपको लगा कि आपने कुछ एकदम नहीं नया कुछ सीखा या नया कुछ जाना जो आपको शायद पहले नहीं जिसमें कुछ पता था या ऐसे कुछ?
नहीं नहीं नया तो हर बार सीखते हैं, वरना तो हम ये करेंगे क्यों? सबसे पहले तो हम खुद के लिए करते हैं, इसमें श्रोता लोगों का कुछ हो जाता है तो साइड इफेक्ट है। तो पहली चीज तो पुलियाबाजी हम लोगों के खुद के लिए है कि हम लोगों को जानने को कुछ मिलता है। मुझे हमने एक न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग पे एक एपिसोड किया था, वो मुझे और मेरे ख्याल से नया इसमें क्या मतलब मेरे ख्याल से अंग्रेजी हिंदी किसी भी भाषा में वो एक बहुत ही अलग टाइप का टॉपिक था। और हमारा पुलियाबाजी में एक ये रहता भी है ना कि हम ऐसी चीजें डिस्कस करना चाहते हैं जो हिंदी में होती नहीं है अक्सर, तो वो उस एंगल से मेरा काफी पसंदीदा एपिसोड है। उसमें ऑब्वियसली सीखने को तो बहुत ही कुछ मिला, पर हमने उस तरीके का टॉपिक हिंदी में इतनी डिटेल में डिस्कस किया, वो मुझे बहुत पसंद है। फिर हमने अंबेडकर का जो घोषणा पत्र डिस्कस किया वो भी मुझे काफी पसंद है। इसी साल किया ना प्रणय हम लोगों ने रिलीज वो?
हाँ हाँ इसी साल किया,
इसी साल किया वो भी क्योंकि वो अंबेडकर की बहुत राइटिंग्स बहुत पॉपुलर है, लेकिन घोषणा पत्र जो है वो काफी एक हमने अंबेडकर की भी कोई एक ऐसी अच्छी राइटिंग ढूंढ ली जो कि बहुत ज्यादा डिस्कस्ड नहीं है और बहुत महत्वपूर्ण उनका वो आई थिंक लेख है, तो वो भी एक मेरा काफी फेवरेट एपिसोड है। और एक जो रिसेंट हमने सुमित के साथ एनिमेशन इंडस्ट्री पे किया था वो भी मुझे एकदम अलग सी चीज है, और मुझे काफी शौक है उस चीज का पर्सनली, तो मेरे को तो ये ऐसे मैं गिनाता रह सकता हूँ, लेकिन तीन ये मेरे दिमाग में आते हैं। और ये तीन आई थिंक हमारी वैरायटी भी दिखाते हैं कि हम किस तरीके की वैरायटी पुलियाबाजी पर डिस्कस करते हैं।
बिल्कुल आप बताइए प्रणय।
हाँ मैं पॉलिसी वाले एपिसोड बताता हूँ। तो मुझे तो जैसे वो हेमा के साथ हम लोगों ने जो एपिसोड किया था हेमा हटंगड़ी के साथ, और उन्होंने बताया था किस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो रन करनी है उनमें क्या दिक्कतें आती हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे मुझे एक वाक्य याद है उनकी किताब में, और जब उनसे उनने बातें भी की थी कि एक्सपोर्ट करने से क्या फायदा होता है और एक्सपोर्ट करना क्यों जरूरी है एक इंडस्ट्री को, तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि कैसे उनकी जो इलेक्ट्रिक मीटर्स थे उन्होंने सिंगापुर में भेजे थे, और मीटर्स तो ठीक ठाक थे, अच्छे थे, लेकिन उसकी पैकिंग उन्होंने बड़ी मतलब जैसे हमारे यहाँ जुगाड़ टाइप कर देते हैं वैसी की थी, तो वो डीलर ने उनको ताबड़तोड़ बुला लिया कि ये क्या है, मतलब इस तरीके की तुम थोड़ी ना बेच सकते हो। तो मतलब इस तरीके की चीजें पता पड़ती है कि कैसे एक्सपोर्ट करने से कई फायदे होते हैं जो कि इनटेंजिबल होते हैं, उसका कोई लेखा जोखा नहीं हो सकता, लेकिन जब हम लोग करते हैं एक्सपोर्ट तभी समझ में आता है कि बाहर की डिमांड क्या है, किस तरीके से हमें अपना प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग, प्रोडक्ट्स को कैसी किस तरीके से बेचना है, और वो लेसन जब हमें सीखेंगे तभी हम लोग कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स बना पाएंगे पूरे विश्व के लिए। तो वो मुझे काफी दिलचस्प लगा था। उसके अलावा एक तो एपिसोड था हम लोगों ने जो रोहिणी नीलेकणी के साथ किया था, और जिसमें हम लोगों ने समाज सरकार बाजार के बात की थी। जैसा मैंने उस एपिसोड में भी कहा था, हम लोग ये फ्रेमवर्क हमेशा यूज करते हैं पुलियाबाजी में आखिर में, तो उसी के ऊपर हम लोगों ने जो बात की रोहिणी से जिन्होंने ये फ्रेमवर्क भारत में अप्लाई किया है, तो काफी कुछ सीखने मिला मुझे। और उसमें भी मुझे एक बात जो अभी भी याद है, उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि कई लोग जब नॉन प्रॉफिट सेक्टर में आते हैं तो वो रिस्क अवर्स हो जाते हैं, मतलब ज्यादा रिस्क नहीं लेते, वो लोग भी जो कॉर्पोरेट्स में काफी रिस्क लेते हैं, लेकिन जब वो नॉन प्रॉफिट में आते हैं तो वो ऐसे कॉजेस को सपोर्ट करना चाहते हैं जिसमें कोई रिस्क नहीं है या जिसमें सेफ है। तो वो एक दिलचस्प बात थी कि किस तरीके से वही इंसान जो कि एक क्षेत्र में काफी रिस्क उठाता है वो नॉन प्रॉफिट को एक काफी अलग तरीके से देखता है, तो वो मुझे अच्छी लगी थी बात।
वैसे एज अ टॉपिक मुझे हमेशा लगता है कि जितने भी पुलियाबाजी के कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड एपिसोड्स हैं वो मेरे मतलब ऑल टाइम फेवरेट्स हैं। मैं काफी बार वो बार बार सुनती हूँ, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि इसमें एग्जैक्टली क्या था, तो मैं वापस जाके एक बार सुनती हूँ।
लगता है ज्यादा लिसनर्स ख्याति सुन रही है बार बार।
सारे सारे इसी तरह से हम स्पॉटिफाई में टॉप पॉडकास्ट लिस्ट में आ गए हैं ना।
थैंक्स टू ख्याति।
तो फिर मैं नेक्स्ट कर लिया।
हाँ मैं ये बोल रहा था कि ख्याति के साथ जो हम लोगों ने पहला एपिसोड भी किया था जेनरेटिव एआई पे, वो तो इतना प्रासंगिक भी हो गया है कि उसके ऊपर बहुत सारे और एपिसोड करने पड़ेंगे हमें, लेकिन मुझे बहुत खुशी थी कि पुलियाबाजी में हमने उसे डिस्कस किया है चैट जीपीटी वगैरह के पहले ही, मतलब अभी इतनी बात हो रही है, लेकिन हम लोगों ने बात की थी जेनरेटिव एआई की, और ख्याति ने बड़े अच्छे से समझाया था किस तरीके के अलग अलग जेनरेटिव एआई हैं और उसका क्या असर पड़ेगा। तो अच्छा, बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला था हमें श्रोताओं से, तो मुझे वो एपिसोड भी बहुत पसंद आया। तो ख्याति ही श्रोता भी है और ख्याति ही अच्छे एपिसोड भी बना रही है, तो फिर हम क्या बोले।
हाँ तो ऐसा कौन सा एपिसोड है वैसे जिसमें आपको लगा कि ठीक है हमने बात तो की है पर शायद इस पे और बात होने की जरूरत है, या शायद हमें किसी और एक्सपर्ट को बुला के इसके बारे में बात करने की जरूरत है, ऐसे भी आई एम श्योर कुछ तो टॉपिक्स रहे होंगे जिसमें आपको ऐसा फील हुआ होगा।
नहीं, मुझे तो ये फॉर एग्जांपल जो एआई वाला ही एपिसोड था वो हमने जस्ट सतह ही खुर्ची है, तो हाँ। उसमें अभी बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए और आगे जाने के लिए उसमें डीप, तो मुझे लगता है कि वो एक एपिसोड बस अभी चर्चा शुरू हुई है ऐसा उस पे लगता है, उससे काफी लोगों की जिंदगी बदलने वाली है।
और प्रणय आपको?
हाँ मुझे भी वही लगता है कि वैसे तो पुलियाबाजी की का हर एपिसोड शुरुआत है, तो कई चीजों में जो भी टेक्नोलॉजी की बातें हैं वो और समझने की जरूरत है, जैसे न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग भी, उसमें भी बहुत कुछ होगा शायद इस दशक में, नई चीजें होंगी, तो वो पुलियाबाजी चलती रहनी चाहिए उस पर, तो करते रहेंगे हम लोग नई नई बातें। और हाँ फिर हम लोगों ने एक पब्लिक फाइनेंस के ऊपर एक एपिसोड किया था अवनी के साथ, अवनी कपूर के साथ सीपीआर से, वो भी मुझे लगता है कि हमें और समझने की जरूरत है उसे, तो जैसे हम लोगों ने भारतीय स्तर पर क्या था, लेकिन राज्यों के पब्लिक फाइनेंस क्या है, कैसी है, किस तरीके से उसमें बदलाव आ रहा है, उस पर भी चर्चा करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से कुछ दो तीन राज्य वैसे ही पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम पे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या असर होगा वगैरह वगैरह। तो कई ऐसे विषय हैं जो उभर कर आ रहे हैं और पब्लिक फाइनेंस पर और चर्चा होनी चाहिए। एक ऐसा विषय जिस पर ज्यादा बातें और करते नहीं है कोई, लेकिन बहुत जरूरी है ये विषय।
मुझे लगा कि हमें ना वो हमने जो वाटर के प्राइसिंग वाले टॉपिक पे बात की थी उस पे मुझे लगता है हम और बातें कर सकते हैं, और हमें शायद किसी एक्सपर्ट को बुलाना भी चाहिए जिसके साथ हम पानी के बारे में और बातें कर पाए, क्योंकि मुझे लगता है पानी मतलब खैर समझाने की क्या जरूरत है, तो सबको पता ही है कि पानी कितना इम्पोर्टेंट विषय है। तो प्रणय, आप कुछ आज भविष्यवाणी डिस्कस करना चाहते थे, आप कुछ 2023 के लिए आप कुछ भविष्यवाणी करना चाहते थे, तो पहले तो मुझे ये थोड़ा बताइए कि जैसे मुझे नहीं समझ में आता कि भविष्य मतलब ये प्रेडिक्शन जो हर साल लोग करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता क्यों इतना करते हैं, लेकिन आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया जो आप शायद बता सकते हैं श्रोता के लिए कि आपको क्या इसमें क्या यूजफुलनेस लगती है कि ये क्यों करना चाहिए एज ए एक्टिविटी।
हाँ, तो मुझे लगता है कोई एक कोई भी जो भी विश्लेषण करता है एनालिस्ट, तो हम लोग एनालिस्ट तो हैं ही मतलब कई क्षेत्रों में, उनको वो हर जाने अनजाने में जरूर भविष्यवाणी करते हैं और अक्सर अनजाने में करते हैं, और वो बोलते हैं कि हाँ ऐसे ये सरकार नहीं आएगी या ये सरकार नहीं है, लेकिन उस पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते और कि उसका एक्चुअली वो जो भविष्यवाणी थी वो सच आई या नहीं आई। तो जैसे फिलिप टेटलॉक है, उनकी एक बहुत फेमस किताब है सुपर फोरकास्टिंग, शायद हम लोगों ने पुलियाबाजी में भी उसके बारे में बात की होगी, लेकिन उसमें यही है, वो एक कॉन्सेप्ट बताते हैं आउटकम इररिलेवेंट लर्निंग, मतलब जैसे हम लोग कह सकते हैं क्या निष्कर्ष रहित ज्ञान। तो अगर हम लोग नई चीजें तभी सीख पाएंगे जब हम लोग एक भविष्यवाणी करें, और अगर वो भविष्यवाणी गलत हो तो हम लोग पीछे जाकर फिर सोच पाए कि यार ये मैंने जो भविष्यवाणी की थी वो गलत क्यों हो गई। तो जब तक हम लोग उस तरीके का प्रोसेस सिस्टमैटिकली नहीं कर पाएंगे हम लोग नई चीजें नहीं सीख पाएंगे। तो जैसे हम लोग एक भविष्यवाणी करेंगे और फिर अगर वो चीज सच नहीं हुई तो हम लोग कोई ऐसे ही कोई एक्सक्यूज दे देंगे कि अरे मैंने तो सही सोचा था लेकिन दुनिया में कुछ और हो गया या फिर दुनिया गड़बड़ हो गई इसलिए ये नहीं हुआ। तो हम लोग अपना जो जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेजियन प्रायर्स, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारे किसी भी प्रेडिक्शन के लिए, वो अगर हम लोग अपडेट नहीं कर पाए तो हम लोग सीधे उसी दिशा में सोचते रहेंगे जिससे हम लोगों ने शुरुआत की है। तो इसीलिए ये आउटकम इररिलेवेंट लर्निंग को अवॉइड करने के लिए मैं कहता हूं कि हर साल प्रेडिक्शन कीजिए, और खुद के लिए, मैं और किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, ये खुद के लिए, जिससे कि आप साल के अंत में जाकर फिर से रिफ्लेक्ट कर पाए कि आप सही थे नहीं थे, और ज्यादा जरूरी है कि आप अगर सही नहीं थे तो क्यों नहीं थे वो जानना।
अजम्पशंस आपके गलत है वो ज्यादा जरूरी है समझना। तो आउटकम तो हो सकता है कि कुछ इधर उधर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके एग्जम्पशंस गलत थे तो आप वो जरूर सुधारना चाहेंगे। और एक और होती है इंसान की एक अक्सर आदत ये भी रहती है, थोड़े हम वेग रहते हैं, ये भी बोल देंगे और वो भी बोल देंगे, फिर कुछ भी होगा तो कहेंगे ठीक है, पर जब आप क्लियरली लिखते हैं और बोलते हैं कि मैं ये कह रहा हूं तो आप फिर उसके बाद छुप नहीं सकते बाद में।
हाँ, और आपको बराबर से सोच के बोलना पड़ेगा, आप ऐसे ही नहीं बोल पाओगे ना जब आप सही से कुछ, तो वो भविष्यवाणी के लिए भी आपको एक तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना देना पड़ेगा, आप दोनों साइड नहीं रह सकते हो।
हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात की आप दोनों ने, क्योंकि क्या होता है भविष्यवाणी हम लोग अक्सर ऐसे कहते हैं कि भारत और बड़ा विश्व पावर बन जाएगा अगले साल, इसका क्या मतलब है क्या है ये? इस आप फिर मतलब साल के अंत में आप दोनों तरीके के एग्जाम्पल देके इसे प्रूव भी कर सकते हो, डिसप्रूव भी कर सकते हो। तो मैंने जब ये एक्सरसाइज शुरू की, अच्छी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अच्छी भविष्यवाणी करने के लिए आपको एक तो समझना पड़ेगा कि क्या प्रिसाइज मेजरमेंट क्या है। तो अगर आप बोल रहे हैं भारत बड़ा विश्व पावर होगा तो आपको ये सोचना पड़ेगा इसका अच्छा मापदंड क्या है, और वो मापदंड पे भारत कितने पोजीशन आगे जाएगा, ये सब चीजें करना मुश्किल रहता है। तो एक्चुअली इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो रही है, जैसे मेटाक्यूलस एक प्लेटफॉर्म है, अभी यूएस गवर्नमेंट खुद एक सुपर फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म फंड करती है, क्योंकि कई लोगों ने देखा है कि जो सुपर फोरकास्टर्स है वो कई बार बेहतर प्रेडिक्शन कर पाते हैं कंपेयर टू जो एक्सपर्ट्स होते हैं उस डोमेन में, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना, हम लोग एक ही तरीके से सोचने लग जाते हैं अगर हम लोग एक डिसिप्लिन में घुस गए, फिर हम लोग अपने अजम्पशंस जो है वो क्वेश्चन भी नहीं करते, लेकिन जो लोग कॉमन सेंस लगा रहे हैं और डेटा ले रहे हैं और अपने प्रेडिक्शन को हर वक्त हर इंसिडेंट्स के साथ अपडेट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रेडिक्शन और वो साल भर चलता रहे, उन लोगों की जो कैपेबिलिटी रहती है भविष्यवाणी करने में वो ज्यादा बेहतर रहती है एक्सपर्ट के मुकाबले। तो यूएस गवर्नमेंट यूज कर रही है इस तरीके की चीजें उनके इंटेलिजेंस कम्युनिटी में इनपुट्स डालने के लिए, तो ये एक अच्छी चीज है। मैंने तो ये रेकमेंड किया कि हमारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी में भी ये होना चाहिए, हम लोगों को तो अच्छा ही लगता है भविष्यवाणी करना, तो क्यों ना हम लोग इसका सही फायदा उठाए।
तो क्या है आप
तो ठीक है,
अब इस बात पे अगले साल की बता दो तुम्हारी टॉप तीन।
हाँ मैं सोच रहा था क्या प्रेडिक्ट करूं, है ना, तो मैं तीन चार चीजें बताता हूँ। एक तो मुझे लगता है कि अगले साल चीन से भारत का इम्पोर्ट्स बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, जैसे अक्सर लोग बोलते हैं कि
हर साल होता
ही है। मैं तो ये तो कहने के लिए तैयार हूँ कि अगले तीन साल भी बढ़ते ही रहेंगे, जितना आज है उससे ज्यादा, और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मुझे तो लगता है जितने ज्यादा हम लोग इंटरमीडिएट इनपुट्स बनाएंगे या फाइनल इनपुट्स, तो हमें उसके लोअर लेवल इनपुट्स इम्पोर्ट करने ही पड़ेंगे, तो ये मेरी पहली भविष्यवाणी है। दूसरा मुझे लगता है कि चीन और भारत में शायद एक और झड़प होगी, कम से कम एक और झड़प होगी बॉर्डर पे, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी अरुणाचल प्रदेश में भी शुरू हो ही गया है, और जिस तरीके से चीन का रवैया रहा है, जैसे कि वो तो LAC को कभी अपने मानते भी नहीं है कि ये अलग अलग देखने के नजरिए हैं भारत और चीन के, उनके मुताबिक तो काफी सारा हिस्सा जो वो मानते हैं वो चीन में होना चाहिए, तो वो जो लाइंस हमारी हैं वो मानते नहीं है, और ऐसा मुझे लग रहा नहीं है कि ये सेटल होने वाला है हिस्सा, तो ये मेरी दूसरी भविष्यवाणी है। तीसरी ऐसी भविष्यवाणी मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान में भी शायद कुछ ना कुछ रिश्ते और गरमाएंगे, शायद छोटी मोटी और झड़पें होंगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो उनकी तरफ से जनरल बाजवा थे, मुझे लगता है उनका स्टांस काफी रिस्पॉन्सिबल था कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस थोड़े कूल थे उसके लिए, लेकिन अब वो चले गए हैं, और अभी जो नए पाकिस्तानी आर्मी चीफ है वो मुझे नहीं लगता बाजवा की तरह होंगे, तो मुझे लग रहा है वहां पर भी थोड़ी चीजें होंगी। फिर भारत की अर्थव्यवस्था पे प्रेडिक्शन तो नहीं है, तो काफी लोग कह रहे हैं, लेकिन हाँ 6% से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी शायद। और लास्ट, ये प्रेडिक्शन नहीं है लेकिन ये सवाल है, सेंसस होगा कि नहीं इस साल अगले साल, आपको क्या लगता है सौरभ और ख्याति?
हाँ, ये मुझे समाव ऐसा लग रहा है कि शुरू हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, खत्म वो 2024 के बाद होगा।
मेरा तो इस पे कोई मत बना नहीं है, तो पता नहीं
अगले इलेक्शन के बाद डेटा आएगा, शुरू हो जाएगा प्रोसेस पर खत्म नहीं।
हाँ नहीं, ये सेंसस बहुत जरूरी है एक और दृष्टिकोण से, क्योंकि लोग जैसे कह रहे हैं कि 2026 के बाद जो सेंसस होगा उसके बिना पर डिलिमिटेशन हो सकता है, तो कई बार लोग कह रहे थे कि 2031 में होगा वो सेंसस, क्योंकि एक 2021 में होने वाला था, तो 5-6 साल बाद ये विषय को छेड़ा जाएगा, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि अगर ये सेंसस हुआ ही नहीं जो 2021 में था, और 2024 तक तो नहीं होने वाला है मुझे भी ऐसा लगता है सौरभ, क्योंकि इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, तो ये मामला छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन मुझे लगता है 2024 में भी नहीं होगा, 2026 के बाद होगा,
तो जब वो डेट निकल
जाएगा,
हाँ
तो फिर वो डिलिमिटेशन की बात शुरू हो जाएगी जल्दी, तो ऐसे मुझे लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ, पर ऐसा मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें मुझे लगती हैं कि शायद होंगी अगले साल, और अगर मैं गलत हूंगा तो मुझे और भी खुशी होगी।
ग्लोबल रिसेशन आएगा कि नहीं आएगा, कब सबसे, अब तो सब लोग यही प्रेडिक्ट करे जा रहे हैं, पर वैसे रिसेशन में हमेशा ये भी होता है ना कि ज्यादा रिसेशन प्रेडिक्ट होते हैं जितने
होते हैं उससे। हाँ
कि एक वो कोट है ना पॉल सैमुएलसन का कि द मार्केट हैज करेक्टली प्रेडिक्टेड 9 out of the past 5 रिसेशंस। तो रिसेशन का बहुत सुन रहे हैं पर पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा।
पर रिसेशन की तो अच्छी परिभाषाएं हैं ना, जैसे US नेशनल लेवल रिसेशन पर तो पता ही है क्या होता है, तो हाँ, लेकिन नहीं ये नैरेटिव इकोनॉमिक्स
पर इस बार परिभाषा नहीं मानी ना प्रणय, इस बार दो बार हो गया मतलब कुछ अलग है तो हम नहीं बोलते, क्योंकि फाइनली उनका कॉल है डिक्लेयर करना कि रिसेशन है नहीं है। तो दो क्वार्टर का नेगेटिव ग्रोथ हो चुका है यूएस में, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं ये तो टेक्निकल रीजंस की वजह से हो गया है, तो हम इसको रिसेशन नहीं डिक्लेयर करेंगे।
अच्छा,
तो ये हाँ तो ये ऐसा नहीं है कि, तो इस बार थोड़ा सा है गड़बड़ तो क्या थी, लेकिन कह नहीं सकते। मतलब ऐसे देखा जाए तो टेक्निकली तो रिसेशन है, वो हो चुका है यूएस में, पर घोषित नहीं है, अघोषित रिसेशन टाइप है जिसको बोलना चाहिए। और थोड़ा मामला ठंडा रहेगा इंडिया के लिए, मैं बोल सकता हूँ, मुझे लगता है जो वो हम के शेप रिकवरी बोलते हैं कि एक तबका बहुत अच्छा कर रहा है और एक तबका जो है वो अच्छा नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगता है थोड़े और समय कंटिन्यू रह सकता है। पर थोड़े अच्छे साइंस दिख रहे हैं कि फाइनली टू व्हीलर सेल्स जो है वो 2019 के लेवल पर आ गई है। तो ऊपर 2019 और अब में फर्क है ना, 3 साल पहले का रियल ग्रोथ तो नहीं बोल सकते, लेकिन एटलीस्ट डायरेक्शन तो थोड़ी ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से जो के शेप रिकवरी चल रही थी, वो के की नीचे की डंडी थोड़ी कर्सिवो के ऊपर उठ सकती है।
तो सौरभ, मुझे मेरे पास एक सवाल है। आप ये एपिसोड रिकॉर्ड करने से पहले आज हम लोग जब बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग की जो कहानी है उसमें आपको एक बदलाव लग रहा है। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग भारत का कुछ 15-16% जीडीपी है, जितना भी हो शायद आज जितना हो, तो आपकी क्या भविष्यवाणी है कि अगले साल तक वो 1% ज्यादा होगा, 2% ज्यादा होगा, 5% ज्यादा होगा?
नहीं नहीं, 5% ज्यादा तो नहीं हो सकता है। पर एक चीज है, जितना भी लोग बोलते हैं कि भाई एक ये भी मैन्युफैक्चरिंग की एक सक्सेस स्टोरी है, 1985 से आज तक हिंदुस्तान का ओवरऑल ग्रोथ रेट काफी जबरदस्त है, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग का रेशियो मेंटेन हुआ है तब से। ऐसा नहीं है कि वो कुछ 16-15 हुआ, ऐसा कुछ हुआ है इतने सालों में। तो ओवरऑल जो है काफी मैन्युफैक्चरिंग काफी बढ़ी है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ी है, तो उसकी वजह से उसका जीडीपी में हिस्सा कम हो गया, लेकिन ओवरऑल जीडीपी में मेरे विचार में अभी जिस तरह से चल रही है हालत, और स्पेशली ग्लोबल कंडीशंस की वजह से भी, चाइना वगैरह की वजह से, और अभी एक थोड़ा एक कॉम्बिनेशन बन गया है क्योंकि चाइना यूक्रेन रशिया का मामला है, प्लस सरकार की तरफ से जो पुश है वो दोनों एक साथ हो गए हैं, तो मेरे हिसाब से 1% ज्यादा होने हो सकता, आधा से एक, एक शायद नहीं होगा, लेकिन जितना भी अनुपात है मेरे हिसाब से आधे से 1% बढ़ना चाहिए शेयर ऑफ जीडीपी। हाँ, शेयर ऑफ जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा सा बढ़ेगा इस साल,
सिर्फ 1%। सौरभ,
हाँ, सिर्फ एक नहीं है, मतलब सोचो वो 85% कम हुआ है, तो हिंदुस्तान में 1% आज की डेट में भाई $3.5 trillion की इकोनॉमी है, तो 1% कोई छोटा नंबर नहीं होता है हिंदुस्तान में।
बिल्कुल हाँ ठीक। पर सौरभ, मैं ये कंटेस्ट करूंगा जो आप बोल रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग सेम लेवल पे रहा है, वो तो ठीक है रहा है, पर हमारा कंपैरिजन पॉइंट दूसरे देशों से है ना, उनका कितना बढ़ गया है उस दौरान में, तो कई सारे कंपैरेटिव कंट्रीज जो थे वो काफी आगे बढ़ गए हैं उस मैन्युफैक्चरिंग टू जीडीपी, तो उस मतलब हमारा परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है उस क्षेत्र में।
राइट, और यहाँ पे थोड़ा रिलेटिव में थोड़ी भागा दौड़ी वो भी रहती है। एक और भी चीज है कि सर्विसेज भी इंडिया का बहुत अच्छा ही कर रहा है, तो शेयर बढ़ाने में एक तरीके की दौड़ है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग कितना भी अच्छा करे, अगर सर्विसेज और अच्छा कर रहा है, और अभी कोविड की वजह से खासकर आईटी सर्विसेज को बहुत पुश मिला है और ज्यादा, और ये मेरे ख्याल से अगला डेकेड गोल्डन पीरियड रहेगा आईटी सर्विसेज का, तो ये भी एक चीज है कि अभी बहुत जबरदस्त, मतलब खड़े हो जाओ तो काम मिल रहा है कंपनीज को, ठीक है, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, अगर मतलब आप खड़े हुए हैं, आपके पास दो हाथ हैं, आंख हैं, तो काम मिल रहा है, ठीक है, तो एकदम जबरदस्त काम है सर्विसेज में भी, तो इस तरह से, लेकिन मुझे लगता है फिर भी थोड़ा सा फर्क तो पड़ना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग को अनुपात में। दूसरा, अगर इकोनॉमी के साइड में ही जाए, तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का मेरे ख्याल से ये अगला साल में हमको फर्स्ट टाइम आई थिंक कुछ सिग्निफिकेंट नंबर आने चाहिए, अभी तक तो मेरे ख्याल से थोड़े टॉय नंबर्स हैं छोटे छोटे, पर अब मुझे लगता है कि थोड़े से कुछ सिग्निफिकेंट नंबर आएंगे कि भाई कुछ 2% या 3% सेल का जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाना चाहिए, इस तरीके के कुछ नंबर हमको दिखने चाहिए।
आप अगले साल 4-व्हीलर्स की बात कर रहे हैं या 2-व्हीलर्स?
2-व्हीलर्स, अभी 4-व्हीलर में थोड़ी गाड़ी थोड़ी दूर,
पर 2% तो हो गया ना सौरभ ऑलरेडी 2-व्हीलर्स का पिछले साल के सेल्स?
नहीं, 2 करोड़ 2-व्हीलर बिकते हैं यार इंडिया में, ठीक है, तो हमारा बेस जो है वो बहुत बड़ा है, और ये सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों के भी तुम देखोगे तो बात हजारों में हो रही है, मतलब ओला वगैरह के 8-9 हजार व्हीकल, एथर के 3-4 हजार व्हीकल, है ना। तो सबके ऐसे मतलब मंथली सेल जो है ये बहुत ही छोटे छोटे नंबर है, पर आई थिंक अगले साल में हमको थोड़े सिग्निफिकेंट नंबर आने चाहिए। और थ्री व्हीलर कमर्शियल व्हीकल में तो टेक ऑफ होगा जबरदस्त, हो सकता है 10-20% तक भी, 10% 20% भी पहुंच जाए। और दूसरी एक और चीज है प्रणय सोचने वाली, हम इतने जल्दी परसेंटेज नहीं भी बढ़ाना चाहिए, फाइनली जो सेल हो रहा है वो कुछ ही शहरों में भी हो रहा है, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टीयर टू सिटीज में तो अभी है ही नहीं ना। टॉप 10 शहर हैं जो वहीं पर है ये ज्यादातर जो सेल है अभी, तो उसके बाहर जाना है सिग्निफिकेंट नंबर्स आने के लिए, तो उतना भी हो जाए मेरे ख्याल से। हमारा टारगेट ही क्या था, 2030 तक अगर हम 20-25% कर लें तो बहुत है ना। एक और मीन उसको तो भविष्यवाणी नहीं बोलना चाहिए, अभी चैट जीपीटी 4 आ जाएगा अप्रैल में, तो मेरे ख्याल से टेक्स्ट और इन सब में एआई जो जेनरेटिव एआई है वो अभी मतलब ताबड़तोड़ मचाने वाला है। मैं वेट कर रहा हूँ कि मतलब रीजनल लैंग्वेजेस हिंदी वगैरह में कब आएगा, पर अभी मेरे ख्याल से अगले साल तो नहीं आएगा।
ये एआई के रिलेटेड एक रिफ्लेक्शन था, भविष्यवाणी नहीं थी। 10 साल पहले जब हम बात कर रहे थे तो अगर आपको याद होगा हम ऑटोमेटेड कार्स की बात कर रहे थे, और हमको लग रहा था कि कितना चेंज आ जाएगा, ड्राइवर्स की जॉब चली जाएगी और मतलब गाड़ियां ऐसे ही विदाउट ड्राइवर्स ही घूमने लगेंगी। पर अभी हमें नहीं लग रहा कि अभी तो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो कुछ ड्राइवर्स की तो जॉब सुरक्षित लग रही है, पर उसके सामने जो व्हाइट कॉलर जॉब्स है उसके ज्यादा चीजें ऑटोमेटेड हो
चुकी
है ऐसा लग रहा है। हाँ
तो उनको क्या चीज, एक चीज हम पुलियाबाजी के दर्शकों को पता होगा कि हम उनको शुरू से कह रहे हैं कि ये होने वाला नहीं है जल्दी।
अच्छा।
तो
ऑटोनोमस कार
पहले एपिसोड से कि ऑटोनोमस कार इतनी जल्दी नहीं आने वाली है सड़कों पर, ये हम काफी समय से कह रहे हैं और हमारी ये एक प्रिडिक्शन ठीक साबित हुई है कि नहीं होने वाला। काफी लोग ऐसा बोल रहे थे पर हमने तो काफी बार बोला है कि ये इतना जल्दी नहीं होने वाला है, तो वो और वो अभी भी आई थिंक हम उसी चीज पे हैं। और सेम चीज आई थिंक व्हाइट कॉलर जॉब के साथ भी होगी ख्याति, आई मीन वो बहुत अच्छा है लेकिन पूरा आदमी रिप्लेस कर लेगा, जैसा गाड़ियों के साथ है ना, बहुत अच्छा है लेकिन फाइनली पूरा तो नहीं कर पा रहा है ना।
हाँ, क्योंकि एक एरर रेट है जिसको हम अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं।
तो जैसे एक ADAS होता है जिसको बोलते हैं, ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम बहुत पॉपुलर है, तो मेरे ख्याल से अब उसी तरह से व्हाइट कॉलर लोगों को एकदम टर्बो चार्ज हो जाएंगे, आधा टाइम आप चाय पानी गपशप में लगा सकते हैं, फाइनली आपको आज का आर्टिकल जो है आखिरी के आधे घंटे 2 घंटे में आप क्या बोल सकते हैं कि फिर एक आदमी दिन में 10 आर्टिकल लिख सकता है। पर ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ये चीज इंटेलेक्चुअल आउटपुट, लेकिन ऐसा भी नहीं निकलता ना, ये नहीं है कि अगर मशीन है तो आप ऐसा करके कि हर एक घंटे में आप एक आर्टिकल निकालेंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा इंसान इस तरह से काम करता है ना। पर आई थिंक क्वालिटी शायद बढ़ जाएगी और प्रोडक्टिविटी तो डेफिनेटली बढ़ेगी, और वो प्रोडक्टिविटी एक और भी चीज है कि एक हमारा एक्सपेक्टेशन भी है, हर साल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना, इसी से तो हमारा रियल ग्रोथ हो रहा है ना। अब ये जो ये वाली चीजें आप देख रहे हैं ये उस नेचुरल प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के नंबर से मिलता ही जुलता है या उससे बहुत अलग है, ये भी एक सोचने वाली बात है ना, क्योंकि हर साल होती है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, तो इसी तरह तो ग्रोथ, असल ग्रोथ तो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ से ही आता है ना।
हाँ बिल्कुल।
तो इस बात का निष्कर्ष यह है ख्याति कि आपको AI वाले एपिसोड 10 बार और सुनने पड़ेंगे।
नहीं
ठीक है, तो एक मैं और एक प्रेडिक्शन करने वाला हूँ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे, क्योंकि इसके ऊपर भी हमारा एक एपिसोड है और मुझे तो वो एपिसोड बहुत पसंद आए क्योंकि सौरभ ने बहुत सारी चीजें उसमें भी डिस्कस की थी जो मेरी जो अजम्पशंस थे उसको चैलेंज किया था, तो अच्छे एपिसोड है मुझे और दर्शकों को भी पसंद आए काफी। तो उसमें मुझे लगता है कि अगले साल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बस्ट साइकिल आएगा, तो मतलब ये साइकिल रहती है बूम बस्ट, तो इस अगले साल में जो रेवेन्यू रहेगा वो पीक हो जाएगा और कम हो जाएगा कंपेयर टू दिस ईयर, ऐसा मुझे लगता है। अब इसमें भी दो अपोजिंग फोर्सेस हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि जैसे सौरभ ने बोला इलेक्ट्रिक व्हीकल, दो जो बिल ऑफ मटेरियल्स होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चिप्स का काफी ज्यादा होता है, हर देश इसमें पैसे डाल रहा है तो उसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, लेकिन एक अपोजिंग फोर्स भी है क्योंकि हम लोगों ने जो ग्लोबल सप्लाई चेन थी उसको तोड़ दिया है और अब सब लोग अपने खुद के देश में बनाना चाहते हैं एक नई इंडस्ट्री, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक लॉसेस होंगे। तो मेरा दावा यह है कि जो दूसरा साइड है वो जीतेगा और अगले साल एटलीस्ट तो रेवेन्यू जो है वो कम होगा कंपेयर टू दिस ईयर, तो देखते हैं सही होता है।
मुझे भी लगता है प्रणय, लेकिन एक अलग रीजन की वजह से। मुझे लगता है कि कोविड के टाइम पे ना सारे सेल्स और डिस्ट्रीब्यूटर वालों ने, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वालों ने बहुत बनाया सब, ठीक है, और सब लोगों को अरे नहीं मिलेगा और खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे करके कंपनी को भी थोड़ा सा बेवकूफ बनाया और ग्राहकों को भी। ग्राहकों ने होल्डिंग ज्यादा करी तो उससे ऑलरेडी उनके पास में बहुत माल है तो वो कम खरीद रहे हैं, और कंपनियों ने सोचा अरे सप्लाई इतनी ज्यादा है यानी हमको कैपेसिटी और बढ़ानी चाहिए, तो उन्होंने भी कैपेसिटी, बहुत कंपनीज ने कैपेसिटी इंक्रीज में पैसे इन्वेस्ट किए। लेकिन असली ये दोनों ही चीजें असली नहीं थी, और मुझे लगता है कि अब वापस रियलिटी पे आ रही है चीज, और ये इंडस्ट्री में बहुत लोगों को दिख रहा है, तो जिसको कहते हैं हम ग्लट आने वाला है, तो ये थोड़ा साइक्लिकल हो गया है, ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी जैसा। मतलब एकदम से प्राइस बहुत ऊपर चले गए थे, बहुत शॉर्टेज थी, और अभी ऑलरेडी बाय द वे शॉर्टेज तो खत्म हो गई है, हम ही को दिख रहा है शॉर्टेज तो नहीं है
बिल्कुल।
और अब मुझे लगता है कि ओवर सप्लाई की सिचुएशन अगले साल में आ जाएगी, तो वहां हम पहुंचने वाले हैं।
नहीं बिल्कुल नहीं, जो पिछले ही साइकिल्स रही है वो भी इसी कारण के लिए रही है। एक ओवर ऑर्डरिंग पीरियड आता है तो फिर उसमें कीमतें बढ़ती रहती हैं और फिर ओवर कैपेसिटी हो जाती है और उसके बाद फिर लोग बेचने लग जाते हैं चिप्स और फिर ग्लट आता है। तो पिछले कई सालों में ऐसे हो रहा था, लेकिन इस बार लोग कह रहे थे कि वो साइकिल नहीं होगा क्योंकि इतनी डिमांड बढ़ रही है, AI साइड पर बढ़ रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह कई सारे 5G चिप्स वगैरह नई चीजें आएंगी, तो उस वजह से लोग बोल रहे थे कि इस बार नहीं होगा, और कई देश भी इसमें पैसे डाल रहे हैं ना, तो एक वो भी बात है।
पर पैसे दोनों साइड डाल रहे हैं, कैपेसिटी में भी और खर्चे में भी, तो हाँ चलो ये भी मैं लेकिन इत्तेफाक रखता हूँ तुम्हारी प्रेडिक्शन से।
ओके ठीक है। ओके तो और कोई भविष्यवाणियां हैं जो हम लोग करना चाहते हैं इस मुकद्दस प्लेटफॉर्म पर?
हमें अपनी श्रोताओं को ओपन करना चाहिए कि भाई आप बताइए आपकी क्या प्रेडिक्शन है, और जैसे प्रणय ने बोला कि हिम्मत करके प्रिसाइज प्रेडिक्शन कीजिए और लिख के हमको भेजिए, हम हिसाब रखेंगे फिर आपका एकदम, ठीक है? तो बताइए
अगले साल एक और एपिसोड करेंगे अगले साल के अंत में इसी विषय पर।
बिल्कुल बिल्कुल, तो आप बताइए हमको आपकी क्या प्रेडिक्शन है, और प्लीज हमको ये भी बताइए आपके क्या फेवरेट एपिसोड्स रहे इस साल के, जरूर हमको बताइए, और आप क्या सुनना चाहेंगे पुलियाबाजी में ये भी बताइए, तो हमको अच्छा ही लगता है जितना आपका फीडबैक मिले। हम तो वैसे बकर बकर करते रहेंगे फीडबैक के बिना भी, पर फीडबैक आए तो थोड़े आपके मतलब की करेंगे।
सही बात।
कोई रेकमेंडेशन देना चाहते हैं सौरभ? आपने अभी फिलहाल कोई अच्छी किताब पढ़ी हो ऐसे कुछ जो आप बताना चाहते हैं?
एक्चुअली मैं वैसे हिंदी बहुत कम पढ़ता हूँ, लेकिन अभी मैंने शुरू ही करी, तो अभी मैंने शुरू ही करी है रेत की समाधि,
और
रेत समाधि और गीतांजलि श्री जी की, तो वो काफी जबरदस्त बुक है, बहुत बहुत धीरे धीरे पढ़नी पड़ रही है मुझे, एक तो वैसे हिंदी पढ़ने की आदत कम है उसकी वजह से, और दूसरा जिसको बोलते हैं कि गद्य पद्य दोनों है उसमें, तो मतलब पढ़ने में लगता है इतनी पोएटिक बुक है कि हर लाइन में इतना, मतलब लाइन पढ़ के ना रुकना पड़ता है उसको थोड़ा अप्रिशिएट करने के, फिर आगे बढ़ना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ पढ़ते जाएं, तो मतलब काफी अभी तुम शुरू ही करिए, लेकिन बहुत जबरदस्त लिखाई बहुत जबरदस्त है, आगे की कहानी तो देखी जाएगी, कहानी जो भी हो पर लिखाई जबरदस्त
है। अभी तो पढ़ने का बहुत मन कर रहा है, आपने अभी बता दिया है तो।
नहीं मैं तो हिंदी वाचन में तो मैं हरिशंकर परसाई के जो एसेज हैं वो पढ़ रहा हूँ, तो कई सारी किताबें हैं ना, विकलांग श्रद्धा का दौर वगैरह वगैरह, वो उस तो वो मुझे बहुत बहुत ही एंटरटेनिंग लग रहे हैं ऐसे, और उसमें वो काफी प्रासंगिक है, आज के टाइम पे भी वो काफी चीजें अप्लाई करते हैं, तो वो मुझे बहुत मजा आ रहा है। और अंग्रेजी में तो मैं वो किताब एक रेकमेंड करूंगा, ह्यूमन काइंड अ होपफुल हिस्ट्री, तो रजर ब्रैगमैन की किताब है, एक फिलोसोफर है, विश्व को देखने का अलग नजरिया है, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक सकारात्मक नजरिया है, और शायद मैं पूरी किताब से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन क्योंकि वो एक अलग नजरिया है इसलिए पढ़ना अच्छा है।
मेरी कोई हिंदी की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एक और मैं किताब नहीं रिकमेंड कर रही हूँ, पर मैं एक मूवी रिकमेंड कर रही हूँ, तो नेटफ्लिक्स पे है वो मूवी, इनोला होम्स की एक मूवी आई है, आई डोंट नो आपने देखी है नहीं, पर मुझे ना उसका बैक स्टोरी बड़ा इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। उसमें ये है कि वर्जीनिया वुल्फ का एक्चुअली एक ऐसे था जिसमें उसने लिखा था माय रूम ऑफ वंस ओन, जिसमें उसका प्रीमाइस ये था कि अगर शेक्सपियर की कोई बहन होती जो शेक्सपियर जितनी ही टैलेंटेड होती और उतनी ही एक अच्छी राइटर होती तो क्या वो एक महान लेखिका बन पाती, ये उसका उनका प्रीमाइस है। और उस पर उन्होंने फिर लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ जो भी रीजंस है उस जमाने के हिसाब से। तो उसी प्रीमाइस को उठा के एक लेखिका जो है इनोला होम्स की, जो आई थिंक नैंसी स्प्रिंगर नाम है उनका, तो उन्होंने अगर शर्लोक होम्स की बहन होती, इमेजिनरी कैरेक्टर ही है बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग इमेजिनरी कैरेक्टर है, कि शर्लोक होम्स की बहन होती जो उतनी ही टैलेंटेड होती तो उसकी लाइफ कैसी होती या उसकी कहानी कैसी होती, उसके ऊपर है। तो काफी एंटरटेनिंग है, हल्की फुल्की है बट इंटरेस्टिंग है, तो वो मुझे अच्छी लगी इस साल, तो वो आप देख सकते हैं।
सही है, देखना पड़ेगा वो।
अंग्रेजी में मैं एक और रिकमेंड कर सकता हूँ बुक, अभी हमारे गेस्ट भी रह चुके हैं नितिन पाई, उनकी एक नई बुक आ रही है नितोपदेश नाम से, और बहुत जबरदस्त बुक है, अभी रिलीज नहीं हुई लेकिन क्योंकि मित्र हैं तो पढ़ने का मौका झलक पहले मिल गई है तो, लेकिन बहुत जबरदस्त है, एकदम हितोपदेश और पंचतंत्र के स्टाइल में लिखी हुई किताब है, जिसको हमारे हिंदुस्तान के लिटरेचर का एक तरीका होता है ना, कहानी में कहानी में कहानी और अलग अलग तरीके के कैरेक्टर, और लेकिन मॉडर्न टॉपिक्स और एकदम बहुत ही जबरदस्त मॉडर्न मॉरल स्टोरीज जिसको बोलना चाहिए, तो बहुत बढ़िया बुक है, मिड जनवरी में आ रही है, रिकमेंड करूंगा जबरदस्त।
मैं भी बहुत ही ईगरली इंतजार कर रहा हूँ इस किताब का।
तो हाँ, इंटरेस्टिंग है, तो पढ़िए जरूर, वो ऑलरेडी अमेजोन पे अवेलेबल है प्री ऑर्डर के लिए। तो इसी बात पे खत्म करते हैं आज की पुलियाबाजी और वेट करते हैं हम आपके फीडबैक का। सब लोगों को नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं।
शुक्रिया।
उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया।